Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Chaitanya Charitamrita Madhya Lila Adhyaya 2 अध्याय का शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु के भावन मात की अभिव्यक्ति और तैयार संख्या है 72 उसको आगे ले लीजिए 67 to 72 उधर दिखना चाहिए पीछे यहाँ मुझे नहीं दिखना चाहिए मुझे दिख यहाँ है तो आगे के श्लोक में पढ़ता हूं तुम्हें देव क्रीड़ा रत भुवने नारी जत ताहे कर अभिष्ट क्रीड़ा तुम्हें मोर दयित मोते वैसे मत मार चित मोर भाग्य कैल आगमान तो यहाँ श्लोकों का समूह है 67 से 72 तो आगे के श्लोक में पढ़ रहा हूँ चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में बोलते जा रहे हैं कृष्ण के विरह का वर्णन हो रहा है राधा रानी के मनोभाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को इस प्रकार से संबोधित किया हे प्रभु आप अपनी लीलाओं में रत हैं इसको बंद करने के और आप अपनी इच्छा अनुसार ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों का उपभोग करते हैं आप मुझ पर अत्यंत कृपालु हैं आप अपना ध्यान मेरी ओर दें क्योंकि भाग्यवश आप मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं भुवनेर नारी गना सब कर आकर्षण ताह कर सब समाधान तुम्हें कृष्ण चित्त हर इच्छे कौन पामर तुम्हारे वाक्य वाकरे मान हे प्रभु आप ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों को आकृष्ट करते हैं और जब वे आती हैं तब आप उन सबका समाधान करते हैं आप भगवान कृष्ण हैं और सबके चित्त को हरने वाले हैं किंतु अंततः आप लंबट ही हैं भला आपका सम्मान कौन करेगा ये सब वाक्य चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में कृष्ण के विरह की अनुभूति करते हुए बोल रहे हैं तुम्हारा चपल मति एकत्र ना है स्थिति ताते तो मरना है किस दोष तुमित करुणा सिंधु अमर परम बंधु तुम्हारा नाही मोर कबुरोष हे प्रिय कृष्ण आपका मन सदैव चंचल रहता है आप एक स्थान पर नहीं रह सकते किंतु इसमें आपका दोष नहीं है आप तो करुणा के सागर हैं मेरे प्राण प्रिय हैं अतएव आपसे रुष्ट होने का कोई कारण नहीं है तुम्हें नाथ ब्रज प्राण ब्रज कर परित्राण बहु कार्य नाही अवकाश तुम्हें अमर रमन सुख दिते आगमन ये तुम्हार वैदग्ध्य विलास हे नाथ आप वृंदावन के स्वामी तथा उसके प्राण हैं कृपा करके वृंदावन के उद्धार का उपाय कीजिए हमें अपने अनेक कामों से तनिक भी अवकाश नहीं है वास्तव में आप मेरे गोपता हैं आप मुझे सुख प्रदान करने के लिए ही प्रकट हुए हैं और ये आपकी दक्ष लीलाओं में से एक है मोर वाक्य निंदावानी कृष्ण छाड़ी गेला जानी सुन मोर ये स्तुति वचन नयने कृष्ण को निंदा मानकर भगवान कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं जानता हूं कि वे चले गए हैं, किंतु मेरी स्तुति सुन लीजिए। आप मेरे नेत्रों की पुष्टि हो, आप ही मेरे धन और जीवन हो। हाय, कृपया एक बार फिर मुझे अपना दर्शन दीजिए। और आज का श्लोक है, स्तंभकं पप्रस्वेद वैवर्ण्य अश्रु स्वर भेद देह हैल पुलके व्यापीत हासे कांदे नाचे गाय उठी ती उठी धाय शने भूमे पड़िया मूर्छे। बोले स्तंभ कंप प्रस्थित वैवर्ण्य अश्रु स्वर भेद देह है लकुल के व्यापी आसे कांदे नाचे गाय उठी ती उठी धाय माताजी। इस प्रकार उनका सारा शरीर दिव्य आनंद से व्याप्त रहता था। फलस्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु कभी हंसते, कभी रोते, कभी नाचते तो कभी गाते थे। कभी भी उठकर इधर उधर दौड़ते और कभी भूमि पर गिर जाते और अचेत हो जाते। तात्पर्य भक्ति रसामृत सिंधु में शरीर में होने वाले आठ प्रकार के दिव्य विकारों का वर्णन हुआ है। स्तंभ मन की दिव्य तल्लीनता का सूचक है। इस दशा में शांत मन प्राण वायु पर स्थिर होता है और शरीर में विविध प्रकार के विकार प्रकट होते हैं। ये लक्षण उच्च कोटि के भक्त के शरीर में प्रकट होते हैं। जब जीवन निश्चेष्ट प्राय हो जाता है तो उसे स्तंभित कहते हैं। इस दशा में हर्ष, भय, आश्चर्य, विशाल तथा क्रोध के भाव प्रकट होते हैं। इस दशा में वाक शक्ति जाती रहती है और हाथ पैर की गति रुक जाती है। अन्यथा स्तंभ तो मानसिक अवस्था है। प्रारंभ में शरीर में अन्य अनेक लक्षण देखे जाते हैं। पहले वे अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, किंतु धीरे धीरे वे स्पष्ट होने लगते हैं। जब कोई बोल नहीं सकता तो स्वाभाविक है कि उसकी कर्म इंद्रियां जड़ हो जाती है और ज्ञान इंद्रियां निष्क्रिय बन जाती है। भक्ति रसामृत सिंधु में कंपों को विशेष प्रकार के भय, क्रोध तथा हर्ष से उत्पन्न बतलाया गया है। इसे विपत्तु कहते हैं। जब हर्ष, भय तथा क्रोध के मिलने से शरीर में पसीना आने लगता है तो इसे श्वेत कहते हैं। शरीर के रंग में परिवर्तन होने को वैवर्ण्य कहा जाता है। ये विषाद क्रोध तथा भय के मिलने से उत्पन्न होता है। जब इन भावों की अनुभूति होती है तो मुख का रंग पीला पड़ जाता है और शरीर पतला तथा दुर्बल हो जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में आश्रम को हर्ष क्रोध तथा विषाद का मेल कहा गया है, जिसे बिना प्रयास के ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब हर्ष के कारण आंसू आते हैं तो वे ठंडे होते हैं, किंतु क्रोध के कारण आए आंसू गर्म होते हैं। दोनों ही दशा में आंखें चंचल रहती हैं, पुतलियां लाल हो जाती हैं और उनमें खुजली होती है। ये सारे आंसुओं के लक्षण हैं। जब विषाद आश्चर्य क्रोध हर्ष तथा भय का मेल होता है तब गला रुंध जाता है या अवरोध गदगद कहलाता है। चैतन्य महाप्रभु गदगद रुद्धया गिरा की ओर संकेत करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में पुलक को हर्ष उत्साह तथा भय कहा गया है। इनके मिश्रण से शरीर के रोग खड़े हो जाते हैं और शारीरिक दशा पुलक कहलाती है। ओम ज्ञान तिमिरांगश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं लोकाकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ये जो अध्याय है वास्तव में मध्य लीला और अंत लीला का एक प्रकार से सार है। और इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु का जो दिव्य भावोन्माद है उसका वर्णन कृष्णदास कविराज करते हैं। और वास्तव में इसका वर्णन करना बहुत ही कठिन और अयोग्यता महसूस हो रही है। चैतन्य महाप्रभु का ये जो लीला वर्णन है ये वास्तव में महान भक्तों के कंठ का हार है। कृष्णदास कविराज जब वर्णन करते हैं कि ये जो चैतन्य लीला है ये स्वरूप दामोदर के कंठ में थी और उनके द्वारा रघुनाथ दास गोस्वामी को प्राप्त हुई और जिनके माध्यम से मुझे ये अनुभूति हुई, तो इनका वर्णन करने के लिए व्यक्ति को वास्तव में भौतिक कामना से रहित होना चाहिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का चरित्र कृष्णदास कविराज हमें प्रदान करते हैं और सारे जगत को शुद्ध होने का जो सौभाग्य है वो प्रदान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन करने के लिए सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु की ही कृपा की आवश्यकता है। इसलिए जब वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत की रचना की तो उसकी शुरुआत में वो कहते हैं, पुनः भक्त संगे प्रभु पदे नमस्कार जिवाय स्फुरुक गौर चंद्र अवतार। मैं सारे भक्तों के चरणों के धूल की याचना करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और उनके संग से चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ, ताकि मेरे जो जीवा है और चित्त जो वासना से भरा है वो चैतन्य महाप्रभु का थोड़ा गुणगान कर सके। इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का ये जो लीला चरित्र है जो अमृत के समान है वो प्रदान करते हैं। तो इस अध्याय के श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु के हृदय में जो दिव्य भाव है उन्माद है वो जब जागृत हो गया था तो उसका वर्णन कृष्णदास कविराज कह रहे हैं। कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का शरीर एक गन्ने के खेती के भांति है। और गन्ने के खेती में उन्मत्त पागल हाथी जो प्रवेश करते हैं तो गन्ने के खेत को अस्त व्यस्त कर देते हैं, एक प्रकार से नष्ट कर देते हैं। उन हाथियों में फाइट होने लगती है और वो खेत नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के शरीर में कृष्ण के प्रति ये जो दिव्य भावोन्माद के विकार जो प्रकट हो गए हैं, तो उनका जो हृदय और मन में एक विशेष प्रकार की निराशा का उदय हो गया। और वो निराशा का उदय हुआ क्योंकि जब निराशा का उदय होता है तो व्यक्ति अपने आप को बहुत अधिक दीनहीन मानने लगता है। उसके हृदय में अत्यधिक दीन अवस्था आ जाती है। वो महसूस करता है कि कितना अधिक वो अनर्थ आदियों से भरा हुआ है और वो फिर भगवान से प्रार्थना करता है। तो ऐसा जब हुआ महाप्रभु के साथ तो उन्होंने एक श्लोक का उच्चारण किया। और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के हृदय में दिव्य भाव उजागर होते थे। अलग अलग भक्तों के द्वारा गाए हुए श्लोकों का वो उच्चारण जब करते थे तो एक जो श्लोक उन्होंने गाया और जिसके बाद ये सारे जो श्लोक आए हैं इस श्लोक तक, वो वास्तव में वो संस्कृत श्लोक का बंगाली अनुवाद है। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक का उच्चारण किया जो वास्तव में बिल्व मंगल ठाकुर के द्वारा रचित कृष्ण करणामृत ग्रंथ से है। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए थे, आदिकेश्वर टेम्पल में गए, तो वहां से उन्होंने ब्रह्म संहिता लाई थी और फिर वहां से चलते चलते महाप्रभु कृष्ण नदी के तट पर आए। हम वहां ब्राह्मण लोग ये ग्रंथ पढ़ रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने सुनते ही वो आकृष्ट हो गए, वो कृष्ण करणामृत ग्रंथ को अपने साथ लेके आए। तो उस ग्रंथ का एक श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने बोला और फिर उनके हृदय में वास्तव में राधा रानी के समान कृष्ण के प्रति विरह के भाव जागृत हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे देव, हे दैत, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधो, हे नाथ, हे रमन, हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृश्वर मे। तो ये वास्तव में बहुत मेलोडियस श्लोक है जिसमें राधा रानी कृष्ण को प्रार्थना करती है। वो कहते हैं कि हे देव, हे दैत, हे भुवनैक बंधो, कि हे मेरे प्रभु स्वामी, हे मेरे प्रियतम, कि सारे ब्रह्मांड में आप ही एकमात्र मेरे सखा हो। हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधु, आप क्या करो, कब आप मुझे दर्शन प्रदान करेंगे। और ये सब बोलने के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु के हृदय में ये जो सात्विक विकार है भगवत भाव के, वो सब प्रकट होने लगते हैं। और चैतन्य महाप्रभु फिर क्या होते हैं, क्षणे भूमे पड़िया मूर्छित, तुरंत ही भूमि पर गिरकर मूर्छित हो जाते हैं। तो वास्तव में ये जो चैतन्य संप्रदाय है ये बहुत गरीयसी, जिसको कहते हैं कि बहुत महान है बाकी संप्रदायों में। पद्म पुराण में वर्णन आया है कि बाकी संप्रदायों का मिलन होगा जगन्नाथपुरी में और फिर एक सर्वोत्कृष्ट शिक्षा शुरू होगी, एक संप्रदाय शुरू होगा। और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का एक संप्रदाय है, क्योंकि इस संप्रदाय में जितना अधिक भगवत प्रेम और भक्ति के रसों का विस्तृत वर्णन है वो किसी और संप्रदाय में प्राप्त नहीं होता। और इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु ने ये जो शिक्षा है अपने जो दो सेनापति भक्त हैं उनको प्रदान की, एक थे रूप गोस्वामी और दूसरे थे सनातन गोस्वामी। नरोत्तम दास ठाकुर अपने ग्रंथ प्रेम भक्ति चंद्रिका में इन दोनों का गुणगान करते हुए लिखते हैं, जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रस रूप, कि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी की जय हो, क्योंकि वो दो सर्वसाधारण भक्त नहीं है, असाधारण है। उनमें क्या है, प्रेम भक्ति रस कूप, कि प्रेम भक्ति के जो रस है उसके वो कूप है, कूप मीन्स कुआ है, भरे हुए हैं। इन दोनों का शरीर रसों से भरा हुआ है। इसलिए कवि कर्णपुर इन दोनों का गुणगान करते हैं, तो विशेष रूप से कहते हैं कालेन वृंदावन केलिवार्ता लोकते तिताख्यापयितुं विशिष्या कृपामृतेना विशिषे च देवस्तत्रैव रूपश्च सनातनः च। तो कहते हैं कि दीर्घ काल में जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि ये संदेश लुप्त हो गया था अर्जुन, मैं तुमसे दे रहा हूं फिर से, उसी प्रकार से ये जो रस तत्व का ज्ञान इस संसार में लुप्त हो गया था और यही वास्तव में सर्वोत्कृष्ट वस्तु है एक जीव को अपने जीवन में प्राप्त करने हेतु, और जिसके कारण से चैतन्य महाप्रभु आए और ये रस तत्व का ज्ञान चैतन्य महाप्रभु प्रदान करते हैं। और विशेष रूप से कौन सा कालेन वृंदावन केली वार्ता, कालांतर में वृंदावन केली वार्ता, केली मीन्स लीला है, वृंदावन का जो राधा कृष्ण के दिव्य कार्यकलाप है कालांतर में नष्ट हो गए थे, लुप्ते तिताम ख्यापयेतुं विशिष्या लुप्त हो गए थे, तो फिर इसको क्या किया कृपामृतेनाभिशिषेच्च देव, अपनी कृपामृत के वर्षाओ से चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों को स्नान कराया रूप और सनातन गोस्वामी को। और वृंदावन के लिए वृंदावन लीला का जो चरित्र आदि है वो इन दो महान सेनापति भक्तों के द्वारा चैतन्य महाप्रभु वास्तव में क्या करते हैं हम सबको प्रदान करते हैं। इसी कारण से कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में इन सब चीजों का बहुत ही विशद वर्णन करते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी क्योंकि ये सारे अष्ट सात्विक विकार चैतन्य महाप्रभु के देह में प्रकट हो रहे थे, तो ये अष्ट सात्विक विकारों को समझने से पहले व्यक्ति को क्या समझना चाहिए, श्रद्धा टू प्रेम का जो सीढ़ी है उसको सही ढंग से समझने का प्रयास करना चाहिए। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि किसी व्यक्ति को भक्ति राज्य में या प्रेम राज्य में प्रवेश करना है तो उस व्यक्ति को इन स्तरों को समझना होगा, और वो स्तर क्या है आदो श्रद्धा तथा साधु संगो अथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति शार ततो निष्ठा रुचि ततः अथा शक्ति ततो भावस तथा प्रेमा अभिदंचति साधकानां अयम प्रेमणः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। साधकानां साधक के लिए ये प्रेम की जो सीढ़ियां हैं हां क्रमशील वो प्रेम के धरातल तक वो पहुंच जाता है। इसलिए हां जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है उन्होंने केवल एक प्रकार से देखा जाए इस श्लोक की और गहन व्याख्या करने के लिए एक अमेजिंग ग्रंथ की रचना की माधुर्य कादंबिनी। हाँ, श्रद्धा तो प्रेमा का जो स्तर है उसको उन्होंने बहुत ही विस्तार से और बहुत सरलता से एक साधक के लिए है हाँ समझाया। तो जिस प्रकार से हमें बुखार होता है और बुखार को नापने के लिए ताप यंत्र की आवश्यकता है, ताप यंत्र में थर्मामीटर, तो उसी प्रकार से हम कौन से धरातल पर है हमारी स्थिति क्या है उसको जानने के लिए वास्तव में ये माधुर्य कादंबिनी है जिसके द्वारा जिसको हम अपने धरातल को समझते हैं अपनी कमियों को समझते हैं और प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं आध्यात्मिक स्तर में या भगवत भक्ति में उन्नति करने के लिए। इसलिए आचार्य जी कहते हैं ये जो माधुर्य कादंबिनी है ये वास्तव में माधुर्य वर्षण कारी मेघमाला, मतलब माधुरी या मधुरता का वर्षाव करने वाले मेघ से तुलना उस ग्रंथ की करते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये माधुर्य वास्तव में है क्या वस्तु, हाँ ये माधुर्य माधुर्य हम करते रहते हैं, माधुर्य का एक मतलब है मधुरता, एक अर्थ है स्वीटनेस, लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में माधुर्य नाम चेष्टा नाम सर्वावस्था सुचारुता। माधुर्य का मतलब है कि भगवान कृष्ण की जो कार्यकलाप है उनके जो दिव्य लीलाएं आदि है वो सब समय में
हर प्रकार के उनके कार्यकलाप क्या है, सर्व मनोहर है, हर एक व्यक्ति के मन को हरण करने वाले हैं, इसलिए उनको माधुर्य कहा जाता है। और वास्तव में कृष्ण माधुर्य मूर्ति है या माधुर्य विग्रह है, इसलिए वल्लभाचार्य ने एक अष्टकम ही लिख दिया, एक सॉन्ग ही लिख दिया, मधुराष्टकम। कृष्ण के हर चीजों को उन्होंने मधुर मधुर के रूप में वर्णित किया है। मधुराधिपति कि ये मधुर पति जो कृष्ण है, इनकी हर चीज मधुर है, उनका चलना गमन करना उनकी कार्यकलाप, तो इस प्रकार से भगवान को माधुर्य मूर्ति कहा जाता है। और शास्त्र कहते हैं रसो वैसा, भगवान क्या है, सारे रसों के आगार है, कृष्ण रस स्वरूप है, इसलिए प्रभुपाद कहते कृष्ण कहे क्या है, रसराज श्री कृष्ण। एक प्रभुपाद का छोटा सा बुक है, उसका नाम है रसराज श्री कृष्ण। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कृष्ण को कहते हैं अखिल रसामृत मूर्ति, बाकी अवतारों में रस पाए नहीं जाते, कृष्ण ही ऐसे हैं कि जो केवल अखिल रसों के आगार है या मूर्ति है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान कृष्ण में अनंत उनके जो रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, ये एक समंदर के भांति हैं, और ये सारा समंदर मधुरता से भरा पड़ा है। और वास्तव में कृष्ण की जो मधुरता है वृंदावन में चार चीजों से विशेष रूप से प्रकट होती है, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं चतुर्धा माधुरिस्तस्य व्रज एव विराजते। भगवान कृष्ण ब्रज में इन चार मधुरता के साथ निवास करते हैं, और वास्तव में इसी कारण से कृष्ण अधिक मधुरमय विग्रह है, जिनको हम सुनते हैं लीला माधुर्य है, प्रेम माधुर्य है, वेणु माधुर्य है, रूप माधुर्य है। तो ये जो कृष्ण है यही वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और वो चाहते हैं ये मधुरता का वितरण करना। भगवान कहते हैं या कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत की शुरुआत में कहते हैं कि अनर्पित चरेम चिरात करुणयावतीर्ण कलो, करुणा जब भगवान कृष्ण के हृदय में इतनी भर गई, कृष्ण को कहते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु, लेकिन वो सिंधु कभी अपनी सीमा से बाहर नहीं जाता, लेकिन जब वो जो सिंधु है सागर है करुणा को लांघता है तो वो चैतन्य महाप्रभु है। मतलब भगवान कृष्ण के हृदय से करुणा जब बाहर गिरने लगती है वो चैतन्य महाप्रभु है, और वो चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और जो वस्तु अभी तक उन्होंने अर्पित नहीं की, अनर्पित चरिक्षरा, अनर्पित अभी तक अर्पित नहीं की, उस वस्तु को वास्तव में चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए। इसलिए शुरुआत में कहते हैं आमा बिना अन्य ब्रज प्रेम ना देते, मेरे अलावा वृंदावन की भावना का जो प्रेम है वो कोई और देने में सामर्थ्यवान नहीं है, इसलिए कृष्ण कहते हैं मुझे स्वयं जाना होगा और इसको स्थापित करना होगा। और जब चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि इस ब्रज की भावना से जो डूब गया है, चैतन्य महाप्रभु को सबसे अधिक आनंद होता है। इसलिए सातवें अध्याय में चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखते हैं जगत डूबिल जिवेर हैल बिजनास ताहा देखि पंच जनेर परम उल्लास। जब महाप्रभु और पंच तत्व देखते हैं कि सारे जगत के जीव डूब गए हैं इस ब्रज के सेवा की भावना से, तो उन दोनों को सबसे अधिक आनंद होता है, सबसे अधिक वो आनंद की अनुभूति करते हैं। और इसी कारण से देखा जाए चैतन्य महाप्रभु के समय तो सरल था, चैतन्य महाप्रभु को कोई देखता था ब्रज प्रेम की भावना हृदय में उजागर हो जाती थी, चैतन्य महाप्रभु किसी को आलिंगन करते थे कृष्ण प्रेम उदित हो जाता था, चैतन्य महाप्रभु का डांस कोई देखता था कृष्ण प्रेम उदित होता था। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए तो वहां तो उन महाप्रभु ने ये ला दिया, बाढ़ ला दिया कृष्ण प्रेम से, दक्षिण भारत को उन्होंने आप्लावित कर दिया, तो उस समय बहुत इजी था, हाँ कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं थी। एक प्रकार से महाप्रभु को देखकर आदि हां करके लोग भगवत भावना भावित हो जाते थे, लेकिन अबे हमारे लिए क्या है, भगवत साधना, बिना साधना के हां हमारे लिए अभी असंभव है। हां तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा के प्रभाव से यदि साधक जन भगवत भक्ति की साधना करता है, भजन करता है, तो स्वाभाविक रूप से जो कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम की भावना है उसके हृदय में जागृत होती है, और हृदय वास्तव में भगवत भक्ति का आविर्भाव स्थल है, बल्कि हृदय एक जड़ वस्तु है, लेकिन भगवान की चिन्मयी या अप्राकृत शक्ति के कारण ये जड़ जो जीव, जड़ जो हृदय है उसमें भी हाँ कृष्ण प्रेम जागृत होता है या कृष्ण का वो निवास स्थान बनता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण की इच्छा और भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसका हृदय है। तो इस कारण से हाँ जो हृदय का ही दूसरा नाम एक प्रकार से चिंता है, तो ऐसे हृदय में हाँ भगवत भावना है, लेकिन उसको क्या करना होगा, एक जीव को गंभीरता से उदित करना होगा। इसी कारण से रूप गोस्वामी ने ये सीढ़ियां हमें दी हैं। रूप गोस्वामी सबसे पहले कहते हैं आदर श्रद्धा। तो भक्ति का जो प्रथम स्टेप या सोपान या जिसको स्तर कहते हैं वो क्या है, श्रद्धा है। हर कोई कार्य के लिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है, चाहे वो इवन योग ज्ञान कर्म आदि जो मार्ग है, सब चीजों के लिए श्रद्धा का आवश्यक होना जरूरी है। और भक्ति करने के लिए किसी और योग्यता की आवश्यकता नहीं है, मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे वर्ण रंग आदि कोई क्यों ना हो, देश आदि क्यों ना हो उसका किसी कोई और, तो वो व्यक्ति भगवत भक्ति कर सकता है। कृष्णदास कविराज कहते हैं श्री कृष्ण भजन है सब अधिकारी किबा विप्र किबा शूद्र की पुरुष नारी। वो कहते हैं कृष्ण के भजन के हर कोई अधिकारी है, किबा विप्र क्या ब्राह्मण शूद्र वैश्य स्त्री पुरुष कोई भी भगवत भजन कर सकता है, किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, लेकिन एक अपेक्षा है, और वो अपेक्षा क्या है, श्रद्धा। इसलिए कृष्णदास कविराज ने कहा श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, भक्ति के लिए श्रद्धा का होना परम आवश्यक है, श्रद्धा के बिना किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त करना असंभव है, एवं भौतिक कार्यों में भी। हम अपने बाल भी नहीं काट सकते यदि हमारे पास थोड़ी सी क्या ना हो, श्रद्धा ना हो, किसके प्रति, नायक के प्रति थोड़ा सा फेथ होता है, ना ये मेरा गला नहीं काटेगा, जाके उसके नीचे अपना सर नीचे करके बड़ा समाधि में बैठ जाते हैं और वो अपना हेड शेवादि कर लेता है। तो भौतिक कार्यों के लिए भी श्रद्धा की आवश्यकता है। तो भगवत भक्ति के लिए एक ही योग्यता है शुरुआत की, वो है श्रद्धा। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं तत्र भक्त्या अधिकारिणः प्रथम श्रद्धा। भक्ति के अधिकारी के लिए क्या है, सर्वप्रथम श्रद्धा चाहिए। इसलिए श्रद्धा क्या वस्तु है, पतंजलि में कहते हैं कि चित्त का जो संदेह है और चित्त का संदेह रूपी मल जब दूर हो जाता है और व्यक्ति का अनुकल भाव एक व्यक्ति में या वस्तु में जागृत होता है उसे श्रद्धा कहते हैं। अनुकूल भाव मतलब किसी के प्रति संदेह आदि दूर होते हैं और उसके प्रति अनुकूल भावना हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाती है उस व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए, उस चीज को वास्तव में श्रद्धा कहा गया है। और इसलिए शास्त्रों में वर्णित किया गया है विशेष रूप से रूप गोस्वामी आदि ने कि श्रद्धा जो एक प्रकार का विश्वास है। श्रद्धा का मतलब यही है कि शास्त्रों में वर्णित कार्यों का निर्वाह करने के लिए हमारे हृदय में थोड़ी सी इच्छा जागृत होना, उसको श्रद्धा कहा गया है। इसलिए श्रद्धा सबसे पहले किस चीज में होती है व्यक्ति की, भक्ति शास्त्रों में वर्णित विषयों में श्रद्धा, तभी व्यक्ति भक्ति में आ सकता है कि भक्ति में शास्त्रों में वर्णित जो विषय है उनके प्रति श्रद्धा होती है, हाँ, एक प्रकार का विश्वास होता है। और दूसरी श्रद्धा किसमें होती है? उन विषय जो शास्त्रों में वर्णित है उनको कार्यान्वित, मतलब प्रैक्टिकल रूप में उनको लाना अपने जीवन में, उसको करने के लिए एक श्रद्धा होना परम आवश्यक है। तो ये श्रद्धा यदि दो चीजों में हो जाती है व्यक्ति की, एक तो शास्त्रों में वर्णित विषयों के प्रति और उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के प्रति, तो वास्तव में उसको कृष्णदास कविराज कहते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। तब ये स्थिर हो जाता है कि बस कृष्ण भक्ति करूंगा तो मुझे कोई और करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसलिए गीता में भी भगवान कहते हैं, अब यज्ञ दान तपस्या कुछ भी करते हो तो उसमें श्रद्धा नहीं है तो वो फलीभूत नहीं है। हाँ, इस कारण से भगवान जब उद्धव को भी उपदेश दे रहे थे तो उसमें प्रमुख श्रद्धा का वर्णन करते हैं। कृष्ण कहते हैं, सात्विक या आध्यात्मिक श्रद्धा कर्म श्रद्धा तो राजसी, तामस अधर्म या श्रद्धा मत सेवाया तो निर्गुणा। तो जो सात्विक श्रद्धा है कि थोड़ा अध्यात्म में थोड़ा सा फेथ होता है, और राजसी श्रद्धा क्या है? सकाम कर्मों को करने के लिए उसका फेथ होता है। और जो तामसिक श्रद्धा है, जो विकर्म है, उनको करने में उसका एक प्रकार का झुकाव होता है। लेकिन शुद्ध सत्व की श्रद्धा क्या है? मत सेवाया तो निर्गुणा। भगवान कहते हैं, मेरे सेवा के प्रति हाँ जो श्रद्धा है वो वास्तव में इन तीनों गुणों से परे हाँ श्रद्धा है। तो ये जो श्रद्धा की भावना जितना अधिक गाढ़ हो जाती है एक भक्त के हृदय में, उतना ही अधिक वो भक्ति में उन्नत हो जाता है। इसलिए तो कहा गया है हाँ कि जो उत्तम कनिष्ठ और जो मध्यम है इनका स्तर केवल श्रद्धा पर ही निर्भर है प्रमुख रूप से। हाँ, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं, तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसी श्रद्धा दो प्रकार की होती है। और कौन सी श्रद्धा से व्यक्ति को साधु संग प्राप्त होता है या भक्ति की ओर अग्रसर होता है, उसके लिए जीव गोस्वामी कहते हैं, ऐसी श्रद्धा शास्त्रीय श्रद्धा है या जिसको कहते हैं परमार्थिक श्रद्धा। दो प्रकार की श्रद्धा का वर्णन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किया है। वो कहते हैं स्वाभाविक श्रद्धा और दूसरी है बलोत्पादिता श्रद्धा, मतलब बलपूर्वक उत्पन्न की हुई श्रद्धा, और एक है स्वाभाविक मतलब नेचुरल। तो स्वाभाविक श्रद्धा क्या है? जीव गोस्वामी के शब्द में उसको शास्त्रीय श्रद्धा कहते हैं। तो ऐसी शास्त्रीय श्रद्धा जागृत होगी तभी व्यक्ति भक्ति में प्रवेश कर सकता है। और ये ऐसी शास्त्रीय श्रद्धा का जन्म कहां होता है? सत्संगा जायते श्रद्धा, भक्तों का संग करने से, सत्संग करने से वो श्रद्धा हमारे हृदय में उजागर हो जाती है। और जिसी का वर्णन देवभूति को कपिल देव भी कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य सम्मिदो भवन्ति हृत्करण रसायन कथा तज्जोषनादाशु अपवर्ग वर्तमने श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रमश्यति। वहां इस शास्त्रीय श्रद्धा का वर्णन देवभूति को कपिल देव कहते हैं। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसी श्रद्धा के द्वारा ही व्यक्ति के हृदय में साधु संग करने की लालसा जागृत होती है, ऐसी स्वाभाविक या शास्त्रीय श्रद्धा के द्वारा। और दूसरी श्रद्धा है जिसको कहते लौकिक श्रद्धा, लोकाचार रूढ़ी, जो रूढ़ी परंपरा होती है, रूढ़ परंपरा आजादी होती है घरों में समाज में, उसके प्रति जो हमारे फेथ है श्रद्धा है, वो श्रद्धा कभी भी भजन में हितकर नहीं है, हेल्पफुल नहीं है। हाँ, वो शुद्ध भजन के लिए नहीं हो सकती। जैसे प्रभुपाद वर्णन करते हैं उसका कि एक एक व्यक्ति ने अपना सर मुंडन किया था और राजा ने जब पूछा, अरे तुम सर मुंडन क्यों किया हो, मतलब एक व्यक्ति ने किया तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि आपने सर मुंडन क्यों किया है, तो उसने बोला मैं भूल गया, प्रभुपाद ने स्टोरी बताया था, उसने किसी एक का नाम लिया, और एक नाम ले लिया, किसी को याद है? हाँ, किसी एक गंधर्व का मृत्यु हो गई है, एक स्पेसिफिक नाम प्रभुपाद ने लिया था स्टोरी में। तो ये सोचकर गांव के कई सारे लोग अपना मुंडन करते हैं। फाइनली वो राजा के पास जाते, कहते अरे आपने तो मुंडन किया, क्या है सबने? तो उन्होंने कहा, फाइनली जब पूछा कि वो नाम उसने बोला, फिर कहा कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये मेरा गधा था जो मुझे बहुत प्रिय था, अब जिसके कारण मैंने मुंडन किया। तो इस प्रकार से उसके वचनों पर बाकियों ने श्रद्धा रखी, जिसके द्वारा सबने मुंडन किया। लेकिन किसी को पता नहीं था कि मुंडन का कारण क्या है, गधा है। तो ये लौकिक की श्रद्धा है। कई सारे ऐसी चीजें हैं, लोकाचार जिसे कहते हैं, जिस पर हम फेल करते हैं, तो इसके द्वारा कभी भी भजन में सहायता नहीं हो सकती। तो भक्ति में साधु संघ के लिए तीव्र श्रद्धा का उदय होता है जब हम क्या करते हैं, उन्नत महत सत्संग करते हैं। और दूसरी चीज रूप गोस्वामी कहते हैं, अधो श्रद्धा ततः साधु संग। साधु संग जीव गोस्वामी कहते कि ये दो स्तरों में है साधु संग। जीव गोस्वामी लिखते हैं, अधो प्रथमे साधु संग शास्त्र श्रवण द्वारा श्रद्धा तदर्थ विश्वास तथा प्रथमानंतर द्वितीय साधु संगो भजन रीति शिक्षा। मतलब जब श्रद्धा का प्रगाढ़ एक प्रकार से उदय होता है तो सत्संग में भाग लेता है व्यक्ति, और जिसमें भक्तों के द्वारा भक्ति युक्त शास्त्रों का गंभीरता से श्रवण करता है, और ऐसे गंभीरता से श्रवण करके साधु के वाक्यों में उसका जो विश्वास है वो दृढ़ हो जाता है, और उसको पता चलता है कि भगवान के भजन की श्रेष्ठता कितनी महत्वपूर्ण है, अपने जीवन में उसे पता चलता है, और वो स्थिर हो जाता है अपने कर्तव्य पालन में, और फिर दूसरी चीज वो अपने जीवन में लागू करता है, और वो क्या है, दूसरा साधु संघ। दूसरा साधु संघ क्या है, सदगुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है और उनसे भजन प्राप्त करने की शिक्षा को स्वीकार करता है। तो इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं या जीव गोस्वामी कहते हैं, साधु संघ में वास्तव में दो चीजें हैं, शुरुआत में है जनरल हियरिंग और दूसरा है आध्यात्मिक गुरु के द्वारा अपने भजन करने की शिक्षा को सीखना। तो इसलिए भक्ति रूपी मंदिर में जो मेन प्रवेश द्वार है वो आध्यात्मिक गुरु है। 64 भक्ति आत्मों में रूप गोस्वामी इसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में करते हैं, और श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है, गुरु करण धारम। गुरु वास्तव में क्या है, कैप्टन है। इसलिए भागवतम की 11वें स्कंद में कहते हैं, तस्मात् गुरु प्रपद्यत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जो जिज्ञासु है, जो अपना उचित श्रेय चाहता है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, गुरु का शरणागत होना चाहिए, गुरु को अप्रोच करना चाहिए। कौन से गुरु को अप्रोच करना चाहिए, कृष्णदास कविराज कहते हैं, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है, किसी भी गुरु को अप्रोच करना नहीं। गुरु का मतलब जो वास्तव में कृष्ण तत्व में ज्ञाता है। कृष्ण तत्व क्या है कि वो वास्तव में वेद और वेदों के तात्पर्य श्रीमद् भागवत आदि की शिक्षाओं में पारंगत है, पारदर्शी है, और सब प्रकार से अपने शिष्य के संदेहों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है, और कृष्ण में उसका सुदृढ़ विश्वास होकर निष्ठा के साथ भगवत भजन में जो लगा है, और भगवत भजन के द्वारा कृष्ण अनुभूति जिसने अपने हृदय में जागृति अनुभव कर ली है, या कृष्ण अनुभूति से जो संपन्न है, वो वास्तव में आध्यात्मिक गुरु है। जब गोस्वामी कहते हैं, और ऐसा गुरु जिसने भगवत कृपा को अपने जीवन में प्राप्त किया हो, और जिसने काम क्रोध लोभ आदि को वशभूत किया हो, ऐसे आध्यात्मिक गुरु के द्वारा कृष्ण मंत्र को प्राप्त करना होगा, और वो कृष्ण मंत्र ही वास्तव में प्रेम का अंकुर उस शिष्य के हृदय में जागृत करा सकता है। तो ऐसे भक्त संघ के द्वारा और भगवान की सेवा के द्वारा क्या होता है, भजन करने में तीव्रता आ जाती है। इसलिए जो तीसरा धरातल रूप गोस्वामी कहते हैं वो क्या है, अथाह भजन क्रिया आदो श्रद्धा तथा साधु संग, और तीसरी चीज है भजन क्रिया। तो भजन क्रिया क्या वस्तु है, भजन क्रिया वो है जो हमें गुरु के द्वारा प्राप्त हुई है। हाँ, गुरु के द्वारा यथोचित रूप से हमारे कर्तव्य आदि को बताया गया है, वो वास्तव में हमारे लिए भजन क्रिया है। और रूप गोस्वामी कहते हैं भजन क्रिया विशेष रूप से नवदा भक्ति है, लेकिन नवदा भक्ति में भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भजने मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम है ते हय प्रेमधान। तो ये नवदा भक्ति में भी जो विशेष भजन क्रिया गुरु प्रदान करते हैं वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा सबसे महत्वपूर्ण क्या है, 16 मालाओं का जप करना अटेंटिवली। तो इस प्रकार से जो साधक है आध्यात्मिक गुरु के द्वारा और गुरु दीक्षा में वास्तव में यही देते हैं, हरे नाम प्रदान करते हैं और हरे नाम की सेवा, हरे नाम की सेवा में सारी सेवा इंक्लूड है। तो हरे नाम की सेवा करने के लिए शिष्य को प्रेरित करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से जो साधक है अपनी भजन क्रिया में लगता है, तो लेकिन ये भजन क्रिया भी दो भागों में विभाजित हो जाती है। उसके लिए भजन क्रिया में भी वो जो साधक है ऊपर नीचे अपनी साधना में घूमता रहता है। एक भजन क्रिया क्या है जिसको कहते हैं, दो प्रकार की भजन क्रिया है, भजन तो हो रहा है, हर एक व्यक्ति भजन कर रहा है। एक भजन क्रिया क्या है, निष्ठिता भजन क्रिया। निष्ठिता मीन्स कि वो भजन से कभी च्युत नहीं हो सकता, जैसे कृष्ण अच्युत है अपने पोजीशन से च्युत नहीं हो सकते, उसी प्रकार से गुरु ने दी हुई जो भजन कार्य है उससे कभी जो शिष्य है कभी भी साधक च्युत नहीं होता या होने की संभावना भी नहीं है, और उसका भजन कभी शिथिल या शैथिल्य नहीं हो सकता, मतलब ढीला ढाला नहीं हो सकता। और दूसरा क्या है, अनिश्चिता भजन क्रिया में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर छह दशाओं का वर्णन करते हैं। हाँ, छह दशाओं का वर्णन करते वो कहते हैं कि एक भक्त पता कर सकता है कि मैं कौन सी भजन धरातल पर अभी कार्यरत हूं। उसमें वो सबसे पहले कहते हैं उत्साहमयी। हाँ, उत्साहमयी का मतलब है कि भक्ति में शुरुआत में कार्य करने के लिए बड़ा कौतूहल रहता है, कुतूहल होता है। हाँ, हर चीज में बड़े आंखें खोल खोल के कुतूहल कौतूहलवश व्यक्ति कार्य करता है और बहुत एक प्रकार का उत्साह रहता है, और ऐसे लगता है कि मेरे हृदय में अनर्थ जुड़ो है, एक भी अनर्थ नहीं है। हाँ, काम क्रोध आदि ये सब शून्य हो गए हैं और हर कार्य में उसका उत्साह होता है, सेवा करने में, छोटे से छोटे भक्त को भी प्रणाम करने में। हाँ, और दौड़ता है, चाहता है। हाँ, सबको हरे कृष्णा भी बोलता है, प्रणाम भी करता है और शास्त्रों का अध्ययन करने लगता है, और ये भावना उसके अंदर आ जाती है कि वास्तव में वो ये सोचने लगता है कि मुझमें अभी पांडित्य का उदय हो गया है, अभी मैं बड़ा परफेक्ट पंडित हो गया हूं, मुझे अभी सब चीजें बड़ी अच्छी तरह से समझ में आती हैं। तो इस प्रकार से उसका उत्साह में धरातल बना रहता है, इसको कहते हैं कौतूहलमय मनोदशा। ये उसके मन की दशा होती है, वो सोचता है कि मैं बड़ा अच्छा गायक हूं, बड़ा अच्छा मर्दन प्लेयर हूं, बड़ा अच्छा प्रवचक हूं। हाँ, इस प्रकार से ये भावना उसके हृदय में बनी रहती है। और फिर दूसरी जो भावना, दूसरा दशा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं घन तरलता। घन तरलता का मतलब है कि अभी वो शास्त्रों का अध्ययन कर करके, इन सब चीजों को कर करके कभी कभी गाढ़ हो जाता है, कभी तरल हो जाता है। तरल में जैसे फ्रिज में कुछ रखो तो वो घन हो जाता है, बाहर निकालो तो बहने लगता है। तो कभी कभी उसकी प्रैक्टिस बड़ी एक हफ्ता ठीक से चलती है, मंगल आरती आना, जपा में बैठना, भागवतम सुनना, रोज एक घंटा पढ़ना, और फिर महीने बीत जाते इतना तरल हो जाता है कि फिर जन्माष्टमी ही मंगल आरती या फिर दो हफ्ते के बाद ही। तो ये घन तरलता से वो लड़ाई झगड़ा करता रहता है। एक वीक ऑन, एक वीक उसका स्विच ऑन रहता है, दूसरे वीक उसका स्विच ऑफ हो जाता है। कभी आनंद आता है भक्तों के संग में तो भक्तों को देख के इतना दुख महसूस होता है कि उससे भक्त टॉलरेट नहीं हो पाते। तो उसकी ये घन और तरल दशा है। और ऐसी अवस्था में जो साधक है उसको थोड़ी सी बाधा आ जाती है तो सब कुछ चौपट हो जाता है, उसका सेवा, उसका साधना, उसका भजन, सब कुछ अव्यवस्थित हो जाता है थोड़ी सी बाधा में। ये दशा घन तरलता दशा है। और तीसरी दशा क्या है, भजन क्रिया में वीड विकल्प। वीड विकल्प का मतलब है कि इस भक्त के हृदय में हमेशा भजन विषय संकल्प और विकल्प चलते रहते हैं। वो सोचता है गृहस्थ आश्रम ठीक है या त्याग आश्रम ठीक है, अभी धन कमाओ या बाद में कमाओ, अभी टाइम दो भक्ति के लिए थोड़ा बुढ़ा हो जाने के बाद टाइम दो। वो शास्त्रों में बहुत सारे उपदेशों को पढ़ता है, माया के बारे में पढ़ता है, कृष्ण के बारे में पढ़ता है, और उसमें उसका द्वंद चलता रहता है संकल्प विकल्प से। ऐसा भक्त हमेशा फाइट करता रहता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तो भागवतम के इतने श्लोक का वर्णन करते हुए इसका बड़ा लंबा वर्णन किया है। और चौथा धरातल है विषय संग्रह। विषय संग्रह का मतलब कि कई साल बीतने पर भी ये हृदय में जो अनादि काल से भौतिक भोग करने के जो संस्कार है बने हुए हैं, तो ये जो मन और चित्त फिर भी कभी कभी क्या होता है, विषय भोगों के लिए दौड़ता है। ये विषय संग्रह धरातल है। उसे पता है कि ये सही नहीं है, वो निश्चय भी करता है कि विषयों को त्याग दूंगा, लेकिन वो संस्कार इतने पावरफुल होते हैं कि फिर से विषय भोग में लग जाता है। कभी कभी उन विषयों की बहुत निंदा भी करता है प्रवचनों में, बातों में, शास्त्रों में, लेकिन फिर से वो पराजित हो जाता है और फिर से विषय तरंगों में बह जाता है। इसको कहते हैं विषय संग्रह। और पांचवा है नियमाक्षमा। नियमाक्षमा मतलब ये जो अवस्था है, ये अवस्था में जो भक्त है बड़े बड़े संकल्प लेता रहता है। जन्माष्टमी आ गई कि अगले जन्माष्टमी तक मंगल आरती, मतलब और हर एकादशी में 64 माला, मतलब इतने संकल्प लेता रहता है, व्रत लेते रहता है, 1,00,000 नाम जप करूंगा, ऐसे बहुत सारे व्रत लेता है, एकादशी निर्जल, ये भक्तों की सेवा करूंगा कल से, अगले हफ्ते से सब कुछ परिवर्तन मेरे जीवन में, प्रजल्पा बिल्कुल बंद, प्रजल्पा करने वाले भक्त मुंह भी नहीं देखूंगा, ऐसे कितने कितने व्रत लेता है। शाम हो जाती है तो सारे व्रत फेल, दूसरा दिन उदित हो ही नहीं पाता उसके जीवन में, तो अक्षम हो जाता है। तो इसमें इन दोनों में एक साम्य, विषमता भी है और थोड़ा सा साम्य है। मतलब विषय संग्रह में वो विषयों से पराजित हो जाता था, और इसमें क्या है कि उसको वहां विषय त्याग करने का सामर्थ्य नहीं होता, उसमें कठिनाई होती है, अभी भजन में परिपक्वता नहीं हो रही है, इन प्रोसेस है, प्रोग्रेस में है। और यहाँ क्या है, भक्ति में उत्कर्ष मीन्स उन्नति करने के लिए वो प्रयत्न करता है लेकिन सामर्थ्य नहीं है, वहां विषयों का त्याग करने के लिए सामर्थ्य नहीं है विषय संग्रह में। और यहाँ नियमा क्षमा में भक्ति में उन्नति करने के लिए जो संकल्प लेता है उसकी पूर्ति के लिए उसके हृदय में सामर्थ्य नहीं है। और छठी चीज है भजन क्रिया में, जिसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नाम देते हैं तरंग रंगिनी। तरंग रंगिनी मतलब ये नाम ही बड़ा अद्भुत है। तरंग में वो हमेशा, जैसे होता है ना समंदर में तरंगे आते हैं, वेव्स में व्यक्ति समंदर में तैरता है तो बड़ा आनंद लेता है उसमें पीठ पर लेटकर, तो वैसे जब व्यक्ति भक्ति में अवस्थान करता है कुछ साल बीतते हैं, थोड़ा सा स्थिर हो जाता है और थोड़ा बहुत उसका भजन साधन ठीक ठाक चलता है, तो दूसरे भक्त उसमें आसक्त होने लगते हैं, अनुरक्त होने लगते हैं, देखने लगते हैं कि हाँ ये बड़ा डिवोटी है। तो और वो जानते हैं कि भक्त में आसक्ति ही भक्ति का एक सरल साधन है, लेकिन ऐसे समय में उस भक्त के हृदय में वास्तव में अब भक्ति से प्राप्त लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि जो भक्ति रूपी कल्प लता से उत्पन्न ये जो दूसरी चीज है, जिसको कहते हैं रूप गोस्वामी महाप्रभु जब शिक्षा देते हैं उसको कहते हैं उपशाखा। हाँ, इसमें फिर लिप्त हो जाता है। हाँ, इसमें उसको आनंद लेने लगता है। किसमें? भक्ति से प्राप्त जो मान सम्मान लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि में, और इसमें इस तरंगों में रंग जाता है। इस तरंगों में रंग जाता है मतलब इन तरंगों में वो आनंद लेता है, इसी को ही तरंग रंगिनी कहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा किंतु यदि लता रसंगे उठे उपशाखा भुक्ति मुक्ति वांछा जत असंख्य तार लेखा। असंख्य है ये सारे तरंग रंगिनी। और चौथी चीज है ततो अनर्थ निवृत्ति शांत। हाँ, अनर्थ बड़ा सरल है, जिसमें कोई अर्थ ही नहीं है वो क्या है? अनर्थ है। परसों में प्रसाद ले रहा था तो एक भक्त ने कहा प्रभु जी बैंगन में कोई गुण होते है क्या? मैंने कहा उसका नाम ही वो है बैगुन, मतलब गुण नहीं है, लेकिन मैंने कहा गूगल में जाके चेक करो तो वहां आपको उसके बहुत सारे गुण मिलेंगे। तो वास्तव में जिसमें अर्थ नहीं है उसको अनर्थ कहा गया है, और इसलिए हम नरोत्तम दास ठाकुर के उस गीत में पढ़ते हैं असत तेरा सत्य करे माने। जो असत वस्तु है हम कभी कभी उसको सत मानने लगते हैं और उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं। भौतिक भोग का जो सुख है वो सत नहीं है, लेकिन कभी कभी हमारे हृदय में उसकी भावना उजागर होती है और उसको वास्तव में हम सत मानने लगते हैं। तो वास्तव में इस अनर्थों का मूल क्या है? बद्ध जीव के हृदय में भौतिक भोग दुर्वासना की जो भावना है वो सारे अनर्थों की जड़ है, अनर्थों की मूल है। इससे सारे अनर्थों का उदय हो जाता है, और अनर्थ हमेशा समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये अनर्थ कितने हैं? चार प्रकार के हैं। एक है दुष्कृत उत्थक अनर्थ, मतलब अनादि काल से जीव के हृदय में अविद्या से जो ग्रस्त जीव है, जो हमेशा दुर्वासनाओं से भरा हुआ है, और जिसको मैं और मेरा की जो भावना उसके हृदय में छपी हुई है, जिसके कारण से सारे दुष्कृत कार्य में लग जाता है, और उसके हृदय में जड़ वस्तु को भोगने की भावना होती है और उस भोग में प्रगाढ़ आसक्ति होती है, जिसके कारण वो भक्ति करने में उसको बहुत कठिनाई होती है और भजन करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। ये एक प्रकार का अनर्थ है, दुष्कृत उत्थुक अनर्थ, मतलब पूर्व संचित संस्कारों के कारण भोग करने की तीव्र लालसा जो हमें भक्ति करने में परम बाधा प्रदान करता है। और दूसरा अनर्थ है सुकृत उत्थक अनर्थ, मतलब सुकृति से जो जन्म लिया हुआ अनर्थ है, अनेक जन्मों की जो सुकृति है या अनेक जन्मों का जो सकाम पुण्य फल है, जिसके कारण भक्ति में आने के बाद भी भक्त के हृदय में उच्च लोक स्वर्ग आदि का भोग करने की जो कामना है वो बनी रहती है, जिसके कारण उसको कहते हैं सुकृति उत्थक अनर्थ। रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऐसी इसमें मुक्ति की जो कामना है वो भी ऐड हो जाती हैं। इसलिए भजन का जो रस है उसको वो आस्वादन नहीं कर पाता। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख शास्त्र कथम अभ्युन दयो भवे। कि भुक्ति मतलब भोग की और मुक्ति की जो कामना है वो पिशाची के समान है। ये दो कामना जब हृदय में होती है तो भक्ति से अनुभव करने वाला सुख वो अनुभव नहीं कर पाता। और तीसरा जो अनर्थ है इस लेवल में वो है अपराध उत्थक अनर्थ, अपराधों से जन्म लेने वाला अनर्थ। और इन सब अनर्थों में ये जो अपराधों से जन्म लेने वाला अनर्थ है वो भक्ति का प्रबल विघातक है, मतलब भक्ति को नष्ट करने वाला है। बाकी सब चीजें पाप आदि की तुलना कपास से की गई है, ज्वलंत आग्नि से कपास जो रुई है वो जल के भस्म हो सकती है, उस प्रकार से पाप नष्ट हो सकते हैं, लेकिन जो अपराध आदि से उत्पन्न जो अनर्थ है उसके लिए बहुत कठिनाई भक्त को अपने भजन क्रिया में होती है। तो इसलिए अपराधों से रहित होना अपने त्रुटि को स्वीकार करना और गंभीर अनुताप करना, यही वास्तव में उसके लिए पश्चाताप है। और जो चौथा अनर्थ है वो है भक्ति उत्तक अनर्थ, मतलब भक्ति से उत्पन्न अनर्थ। ये वो तरंग रंगिनी के समानी है, भक्ति करता रहता है लेकिन धीरे धीरे उसके पास ये सब चीजें आना शुरू हो जाती है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि, और वो चाहने भी लगता है अपने हृदय में। जब तक ये नहीं आता तो लगता है ये भक्ति नहीं हो रही है, 10-12 लोग मुझे रोज प्रणाम करने वाले नहीं हो तो लगता है कि मैं अभी तक शुद्ध भक्त नहीं बना, स्टेटस में कुछ कमी है। भक्तिक जीवन में हम स्टेटस के लिए मरते हैं, भक्ति में आने के बाद में क्या होता है, जीवन बीतता है एक स्टेटस प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक साधक को ये जो भक्ति से उत्पन्न अनर्थ है उससे सतर्क होना चाहिए, और दैन्यता की भावना से भक्तों के अनुगत होकर अपनी भक्तिमय कार्यों को करते रहना चाहिए। क्योंकि ये जो अनर्थ है, ये जो विशेष ये जो अनर्थ है लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि वाला, ये जो भगवत भक्ति रूपी जो मूल शाखा है उसी के ऊपर जन्म लेता है, उसी से ही पोषण होता है, उसी पर ही बढ़ता है, और जिसके कारण भक्ति रूपी जो मूल शाखा है वो ड्राई हो जाती है और फिर सब कुछ दिखावा हो जाता है। हाथ में माला दिखावा जब करने के लिए, फिर सारी चीजें दिखावा के रूप में व्यक्ति सोचता भी इतना साथ बीत गया अभी छोड़ भी नहीं सकते और मन अंदर जा भी नहीं रहा है, तो वो बेचारा क्या करता है, केवल कंटिन्यूअसली सहन करते हुए आगे बढ़ता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं प्रथमे उपशाकार करे छेदन तबे मूल शाखा बाड़ी चाय वृंदावन। इसलिए सर्वप्रथम उस शाखा का छेदन करना चाहिए, तब ये जो भक्ति की मूल शाखा है वृंदावन की ओर प्रवेश करेगी। हाँ, और फिर आगे का धरातल कौन सा है, रूप गोस्वामी कहते हैं ततो निष्ठा। निष्ठा जब साधुओं के मुख से कृष्ण कथा आदि को सुनते हैं निरंतर तो अनर्थ नष्ट होने लगते हैं, और फिर भजन करने में निष्ठा का उदय होता है। इसलिए हम शुरुआत में गाते हैं, भागवतम में वर्णन आया है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर भवति नैष्ठिकी। ये सब नष्ट अभद्र आदि नष्ट हो जाते हैं और भक्ति वास्तव में हमारे हृदय में एक प्रकार से स्थापित हो जाती है, तब हम एक प्रकार से निष्ठा को प्राप्त करते हैं। तो वास्तव में ये जो भजन दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, आचार्यगण कहते हैं दो चीजों में निष्ठा होती है उसकी। क्या दो चीजें निष्ठा, एक तो अपने पर्सनल भजन में वो निष्ठा हो जाता है अपने पर्सनल प्रैक्टिस में, और दूसरा है भजनीय, भगवान भजनीय है, भगवान में भी निष्ठा का उदय हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं इसको नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में इस निष्ठा का वर्णन करते हैं। और सनातन गोस्वामी ने भी बृहद भागवतामृत में कहा है कि एक बार मतलब निष्ठा के उदाहरण चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी अपने स्वयं भाई का देते हैं अनुपम का, और अपने ग्रंथ में हनुमान जी का देते हैं। हनुमान जी के बारे में वो बताते हैं कि कृष्ण जब द्वारका में थे तो गरुड़ के अहंकार को चूर्ण करने के लिए कृष्ण ने कहा जाओ हनुमान को बुला के लाओ। बोल को द्वारकाधीश यादवेंद्र कृष्ण बुला रहे हैं। तो गरुड़ जी गए किम पुरुष लोक में, किम पुरुष वर्ष में गए, हम भारत वर्ष में हैं, वो किम पुरुष वर्ष में गए। हनुमान जी को कहा आपको द्वारकाधीश यादवेंद्र कृष्ण बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं बिजी हूं सेवा में। तो गरुड़ जी ने उनको उठाने का प्रयास किया, हनुमान को गुस्सा आ गया, आपने पूछ उठाई ऐसे बांध के घुमा के फेंक दिया, कहां फेंका द्वारका में, द्वारका में कृष्ण के सामने धड़ाम से गिर जाते हैं गरुड़ जी। कृष्ण हंसने लगते हैं, हाँ कृष्ण उनका अहंकार चूर करना चाहते थे। फिर कहते अभी जाओ और बोलो कि अभी रघुनाथ अयोध्या पति बुला रहे हैं आपको। तब तक सोचा रहे हनुमान जी आएंगे तो कुछ दिखना चाहिए अयोध्या के जैसे द्वारका में, तो बलराम को कहते लक्ष्मण के जैसे खड़ा हो जाओ, और सत्यभामा को कहते हैं चांद की बनो सीता। सत्यभामा ने पूरा प्रयास किया, वो बन ही नहीं पा रहे थे, हटा दिया उस रोल से, है ना ड्रामास में होता है। तो उनको भगवान ने उनको बोला, रुक्मिणी को बोला। फिर सनातन गोस्वामी कहते कि क्यों नहीं हो पाई वो सत्यभामा, तो रुक्मिणी को बोला। और फिर रुक्मिणी हाँ सत्य सीता के रूप में खड़ी हो जाती है। और फिर वहां से जैसे मैसेज मिलता है हनुमान एक जग में गरुड़ जी से पहले आके इतनी स्तुतियां करने लगते हैं, हाँ गाने लगते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर उनके बारे में लिखते हैं हनुमान का निष्ठा एक तो अपने पर्सनल भजन में प्रैक्टिस में, और दूसरा जो अपने इष्ट देव है जो आराधनीय है भजनीय है पूजनीय है दोनों के प्रति। तो वो वहां कहते हैं हनुमान कहते हैं श्री नाथे जानकी नाथे चाभेद परमात्मने तथापि मम सर्वस्वम राम कमल लोचना। श्रीनाथे श्रीनाथ कौन है श्रीनाथ नारायण वैकुंठधापति, श्री मीन्स लक्ष्मी उसके नाथ विष्णु। कहते श्रीनाथ है जानकी नाथ है और यहां दूसरे जानकी के नाथ राम। वो कहते हैं चावेद परमात्मा ने इनमें कोई भेद नहीं है, तथापि मम सर्वस्व लेकिन फिर भी मैं जिनसे प्रेम करता हूं मेरे जो सर्वस्व है वो प्रभु श्री राम है। राम कमल लोचना जिनके नयन कमल के भांति हैं। इस प्रकार से वास्तव में निष्ठा प्राप्त कर लेता है भक्त। और अनर्थ की स्थिति में जब व्यक्ति में पांच चीजें होती हैं तो कभी भी निष्ठा उसकी जागृत नहीं होती। मैं आपका 5 मिनट ही लूंगा, समय बहुत हो गया है। तो अनर्थम के धरातल पर जब व्यक्ति के अंदर ये 5 चीजें होती हैं या ये 5 चीजें खत्म हो जाती हैं तब वास्तव में भक्ति में या साधक के हृदय में अपने भजन के लिए और भजनीय जो भगवान है उनके लिए निष्ठा का उदय हो जाता है। हाँ और निष्ठा का जब उदय होता है तो व्यक्ति कभी श्रवण कीर्तन आदि सेवा में कभी ये नहीं होता, थकता नहीं है, और उसके हृदय से काम लोभ आदि एक प्रकार से दूर हो जाते हैं और सदैव उस निष्ठा के धरातल पर वो अपने इष्टदेव भगवान के सामने भगवान का गुणगान करना चाहता है, उनकी लीलाओं का वर्णन करना, नाम कीर्तन करना, हम जिस प्रकार से बिरमंगल ठाकुर करते थे। तो इस धरातल में 5 प्रकार की बाधा है व्यत्यय है, और वो क्या है? पहला है लय। लय का मतलब है श्रवण कीर्तन स्मरण करने में व्यक्ति को अधिक निद्रा आती है, हाँ भजन क्रिया में ये चीजें हैं जिनके कारण निष्ठा का उदय नहीं होता। मतलब उसको कीर्तन में इतनी नींद नहीं आती जितनी जब वो श्रवण करता है। श्रवण से अधिक नींद आती है जब वो स्मरण करता है भगवान का। स्मरण तो होता ही नहीं उस समय, तो एक प्रकार से समाधि में चला जाता है, सो जाता है। हाँ, तो ये लय की जो स्थिति है ये वास्तव में तमोगुण से उत्पन्न है और साधक हाँ भगवत भजन में एक प्रकार से आस्वादन नहीं कर पाता। और दूसरा दशा कहते हैं विक्षेप। विक्षेप का मतलब है कि श्रवण कीर्तन या भजन आदि में करते हुए भी भक्त क्या करता है, व्यवहारिक बातों में लगा रहता है। हाथ में माला है लेकिन इतना लंबा चर्चा करता रहेगा। हाँ, मतलब वो जब हरिनाम कर रहा है तो वो बातें भी कर रहा है साथ साथ। हाँ, तो उसका जो श्रवण है विषय विषय कथा का श्रवण कर रहा है, तो ऐसे कारणों से उसके चित्त को हरिनाम कभी स्पर्श नहीं करता। ऐसे ऐसे भक्ति के स्टाइल से हरिनाम कभी चित्त को स्पर्श नहीं करता। और जब तक हरिनाम चित्त को स्पर्श नहीं करेगा ये चित्त कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता और वो कथा रस में मग्न नहीं होता। श्रवण में बैठेगा तो भी बारंबार आजकल एक मोबाइल आ गया है, पहले तो बाकी और चीजें हो सकती हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, तो बार बार अभी तक मैसेज क्यों नहीं आया, अभी यहाँ ये नहीं क्यों हुआ, कई चीजें हम करते रहते हैं श्रवण के दौरान भी। और वो केवल नाम लेता रहता है संख्या पूर्ति करने के लिए। उसके जपा का गोल क्या है, संख्या पूर्ति। हाँ, तो इस प्रकार से विक्षेप ये रजोगुण से उत्पन्न है। हाँ, ये जो स्थिति है। और तीसरा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अप्रतिपत्ति। अप्रतिपत्ति का मतलब है ऊपर ही जो वर्णित दो चीजें थी उनका अभाव भी हो लेकिन फिर भी उसके हृदय में भजन करने के लिए कोई उत्साह नहीं है, निरुत्साहित रहता है, कोई सामर्थ्य ही नहीं है, आलसी हो जाता है। ये सारी चीजें तमोगुण के कारण है। और चौथी चीज कहते हैं जिसको टेक्निकल शब्द यूज करते हैं कषाय। कषाय का मतलब है कि पूर्व संस्कारों के कारण अभी भी उसके हृदय में भजन काल करने इतने साल हो गए तभी भी क्या होता है, क्रोध लोभ गर्व ये सारी चीजें बनी रहती हैं, जिसके कारण भक्ति में या भजन में निष्ठा का उदय नहीं हो पाता। और पांचवी चीज वो कहते हैं रसास्वाद। रसास्वाद का मतलब है कि वो व्यक्ति भजन में आविष्ट नहीं हो पाता क्योंकि उसका जो चित्त है भजन करते हुए भी क्या है, विषयों में लगा रहता है, विषयों में मग्न रहता है, इस कारण से वो शुद्ध नहीं हो पाता। तो इसी कारण से इसलिए जहां आचार्यगण कहते हैं कि ऐसी जो निष्ठा है वो जागृत होती है जब हम साधुओं के मुख से कृष्ण कथा आदि को निरंतर श्रवण करते हैं और गुरु के आदेशों पर भगवत भक्ति का सुचारू रूप से पालन करते। फिर निष्ठा के भी अलग अलग प्रकार है, अलग अलग प्रकारों का वर्णन करते हैं कि ये निष्ठा फिर भगवान के भक्ति के विषय में हो जाती है जिसमें उनका शारीरिक मानसिक और वाचिक तीन प्रकार से भक्त स्थिर हो जाता है भगवान की सेवा में, निष्ठा में। हाँ, शरीर से वो भगवान की कथा श्रवण करना, प्रैक्टिकल सर्विसेज करना, अर्चन करना, तुलसी की सेवा करना, परिक्रमा करना, प्रणाम करना, इसमें फिक्स हो जाता है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का वर्णन आता है, वाचा से वो फिक्स हो जाता है, निष्ठा हो जाती है भगवान के नामों का उच्चारण करना, भगवान के गुण लीला स्तोत्र प्रेयर सॉन्ग आदि को, उसमें वो फिक्स हो जाता है, निश्चित हो जाता है। और तीसरा है मानसी निष्ठा, मीन्स भगवान का मन से नाम रूप गुण लीला का स्मरण करता है। हाँ, तो रूप जीव गोस्वामी कहते हैं निष्ठा क्या है, वास्तव में भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि में निरंतर सतत मग्न रहता है, वो वास्तव में एक प्रकार से निष्ठा है। हाँ, तो इन सारे धरातलों का वर्णन रूप गोस्वामी करते हैं। मैं
बाकी थोड़ा फास्ट दो मिनट में बताता हूँ। तो जो रुचि है, अगला जो धरातल है, रुचि का मतलब है उस भक्त के हृदय में श्रवण कीर्तन आदि के लिए विलक्षण रोचकता जागृत हो जाती है। इसलिए जीव गोस्वामी ने कहा कि रुचिर अभिलाष किंतु बुद्धि पूर्वकम, कि उसके हृदय में तृष्णा जागृत हो जाती है, जैसे प्यासा हो जाता है व्यक्ति। रुचि मीन्स प्यास लगने के समान उसको लगता है कि कब मैं सुनूंगा भगवान के बारे में, कब भगवान के नामों का उच्चारण करूंगा, अभी उससे रहा नहीं जाता। उसकी अभिलाषा कृष्ण के नाम रूप गुण लीला के लिए होती है। रुचि विशेष रूप से रुचि का जो विषय क्या हो जाता है, भजन, ये रुचि का प्रमुख गुण है। मतलब भगवान के श्रवण कीर्तन आदि के लिए उसको लेश मात्र भी थकान नहीं होती, और वो एक प्रकार से उसको व्यसन हो जाता है, इंटॉक्सिकेशन हो जाता है। और अन्य समय जब उसको मिलता है इस चीजों के अलावा, तो उसको लगता है कि ये समय अत्यधिक रूप से मैं गवा रहा हूं। तो रुचि के स्तर पर कृष्ण कथा, कृष्ण नाम आदि सुस्वादु लगने लगता है। और आचार्यगण कहते हैं रुचि पाप बीज नाशनाद भक्तो माधुर्यानुभव, मतलब रुचि के धरातल पर पाप बीज नष्ट हो जाता है और भगवान की जो मधुरता है नाम रूप गुण लीला की वो महसूस करता है। हाँ, इस प्रकार से रुचि का धरातल है। और उसके आगे अथा शक्ति, रुचि और अधिक गाढ़ हो जाती है, प्रगाढ़ हो जाती है, उसी को ही आसक्ति कहा गया है। भजन विषया रुचि परम प्रौढतमा सति यदा भजनीयं भगवन्तं विषय करोति तदेव आसक्ति, उसी को आसक्ति कहते हैं। कि जो रुचि है भगवान के नाम रूप गुण लीला में होती है, लेकिन आसक्ति भगवान में होती है। ये दोनों का अंतर है, रुचि और आसक्ति का। लेकिन आसक्ति में भगवान का नाम रूप गुण लीला उसके लिए स्वाभाविक हो जाता है। रुचि में भगवान को, भगवान में एक प्रकार से मन लगाना थोड़ा सा उसके लिए कठिन होता है। मतलब विषयों से हटाकर वो भगवान में लगाता है, भगवान को देखता है। लेकिन आसक्ति के धरातल पर वो भगवान, उसका चित्त इतना अधिक मार्जन हो जाता है उसका दर्पण, कि कृष्ण को वो स्वाभाविक रूप से एक प्रकार से देख पाता है। हाँ, तो इसको अथा शक्ति कहते हैं। हाँ, इस कारण से जीव गोस्वामी कहते हैं कि हर भक्त के लिए ये आसक्ति का धरातल आकांक्षणीय है, इसकी आकांक्षा करनी चाहिए। हाँ, एक भक्त को, हाँ, जिसमें बाकी चीजें उसको बहुत अधिक निम्नवत लगती हैं। हाँ, अथा शक्ति तथा भाव, फिर उसके बाद वो कहते हैं, उसके बाद का जो धरातल है वो क्या है, भाव का है। और भाव का धरातल वो है जिसमें वास्तव में प्रेम अंकुरित होने से पूर्व का धरातल है। हाँ, जिसमें, जिसमें वास्तव में एक भक्त के हृदय में वो लौंग्य जागृत हो जाता है और कृष्ण को सर्व करना चाहता है। और उस भाव के धरातल पर व्यक्ति के हृदय में शुद्ध भक्ति या भगवान का शुद्ध सत्व है, वो वास्तव में भाव के धरातल पर उसके हृदय में प्रवेश कर जाता है और भगवान के प्रति प्रेम का जो अंकुर है वो स्फुटित होने लगता है। इस प्रकार से आचार्य विस्तृत वर्णन करते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि भाव का धरातल में जहां शुद्ध सत्व हृदय में प्रवेश करता है, और शुद्ध सत्व क्या है, भगवान की दो शक्तियों का मिश्रण है। एक है भगवान की सम्मित शक्ति और भगवान की आह्लादनी शक्ति। जब उस भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण को देखता है और कृष्ण को उचित रूप से जानता है, और कृष्ण मेरे प्रेम के असली विषय है, तब वो कृष्ण को रिलीज कर पाता है। और फिर फाइनली जीव गोस्वामी या रूप गोस्वामी कहते हैं आखिरी जो धरातल को क्या है, प्रेम है। हम भगवान के प्रति जो प्रेम की भावना है। और कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में यह प्रेम उत्पन्न हो गया है, ताहर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझा है, ऐसे व्यक्ति के कार्यकलापों को बड़ा से बड़ा विद्वान भी जान नहीं सकता। हाँ, तो इस प्रकार से ये सारे धरातल हमारे आचार्यों की विशेष देन है कि भगवत भक्ति के हर पहलू को समझा जा सकता है और अपने आप को परखा जा सकता है। तो आचार्य की जो लेखनी है वो वास्तव में हमारे लिए दर्पण है, हाँ, जिनको भक्तों की सहायता से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ वास्तव में वही जो भाव के जो विकार है, सात्विक विकार, हाँ, जिनको वर्णन किया गया है, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का ये उन्नत भाव आदि है सात्विक विकार, और सात्विक भाव भी है, भाव के जो नव लक्षण है, हाँ, जिनके द्वारा समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति भाव की दशा में है और कौन व्यक्ति भाव की दशा में नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि जो महान भक्त है, हाँ, वो इन सबको प्रकट नहीं करता है सबके सामने, इसलिए जीवों को सामने उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से पतिव्रता श्री किसी के भी सामने अपने वस्त्रों को उतारते नहीं है, उसी प्रकार से जो ऐसा महान प्रेमी भक्त है, हाँ, सबके सामने भावों के लक्षणों को दिखाता नहीं है, इतना चीपली नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा नकल करने का प्रयास नहीं करो। हर चैतन्य भागवत में हरिदास ठाकुर का उदाहरण आता है, एक सपेरा जब कृष्ण लीला का गान करते हुए गा रहा था, हाँ, सपेरा वहां, तो उस समय जैसे ही हरिदास ठाकुर वहां से गुजर रहे थे, उनको कृष्ण लीला सुनाई दी, इतने भावेश में आ गए कि वहां नाचने लगे और सब उनका आदर सम्मान आदि करने लगे। तो उस समय वहां ब्राह्मण उस भीड़ में इकट्ठा था, उसने कहा इसका इतना सम्मान आदि हो रहा है, मुझे भी वही चाहिए। उसने कहा मैं भी वैसे ही नाचता हूँ, वैसे ही नकल करता हूँ, हम भी वैसे ही करते हैं, नकल करते हैं एक दूसरे की, और फिर चिपली बड़ा भक्त बनने का शो करते हैं या दिखावा करते हैं। वो जो ब्राह्मण कूद के गया वहां ग्राउंड में सर्कल में, वहां हरिदास ठाकुर नाच रहे थे, ये गया तो सपेरा जानता था भाव के लक्षण क्या है, सोचे सर्वसाधारण व्यक्ति असली भाव के लक्षण क्या है और नकली। सपेरा ने एक अपना स्टिक निकाला, लाठी निकाला पड़ा, जो ब्राह्मण नाच रहा था और निकाला लाठी, इतना पिटाई करना शुरू किया, हाँ, तो वो समझ गया, हाँ, कि वास्तव में वो जो ब्राह्मण है वो ढोंग कर रहा था, फिर ब्राह्मण वहां से भाग जाता है, हाँ, और उनकी प्रशंसा करने लगते हैं वो हरिदास ठाकुर के। हाँ, जैसे प्रभुपाद कहते हैं आजकल के जो सहजिया हैं अपनी प्रसिद्धि और अपना मान सम्मान आदि के लिए वो झूठा दिखावा करते हैं और नाचते हैं, अश्रुपात आदि करते हैं, और थोड़ा सा साइड में जाके फिर सिर्फ बीड़ी फूंकते हैं, फिर सबके बीच में आकर नाच गान करते हैं। तो इस प्रकार से चिपले इन सबका दिखावा उचित नहीं है। वास्तव में एक्सप्रेशन ऑफ लव क्या है, कृष्ण को सर्व करना। प्रभुपाद एक लेक्चर में जब इन भावों का वर्णन करते थे उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि द एक्सप्रेशन ऑफ लव इज टू सर्व, कि वास्तव में भगवान के प्रति जो भाव का लक्षण है, हाँ, वो है कि कृष्ण को सर्व करना। हाँ, इस प्रकार से प्रभुपाद ने इन आचार्यों की शिक्षाओं को सरल करके हमें प्रदान किया है, हमें एक दूसरे की सहायता से इनका लाभ उठाना चाहिए और इन कठिन रास्ते को धीरे धीरे पार करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धृतराष्ट्र चैतन्य चरितामृत की, श्रील प्रभुपाद की।